तो तिया बापू के हाँ बोले महाराज यू के जी ठीक है तो बोले भाई शुद्ध होकर के भजन ध्यान करना चाहिए तो बोले आज समय शुद्ध होकर कर सू चट्टी पेशाब जाओ उस वर्त में मत के आकर के तो बोले बहुत ठीक है। अब मैं तो ऐसी आदत नहीं वो करो कोई बिना हो जबरदस्ती है जी अपने श्वास अपने आप ही चले जी अब वो ऐसी आदत पड़ गई कि मैंने भजन करना नहीं पूरा ध्यान करना नहीं पूरा अपने आप ही भगवान का नाम को जब उतोरे भगवान का मन ध्यान है तो लाई जाए तो एक प्रकार से थी। अब मैं चुगली करना दो तीन गेल पड़ गया जहां वो कट्टी जाए जहां आपको एक हाथ से जीव पकड़ दे मैंने कई दिन पकड़ के कट्टी जैसी तो आपको जरा आदत छोड़ देती दिन में जाके चुगली करी कि छेटे ही नहीं है शिक्षा दी कि तू राम राम मत करा कर ना भगवान को भजन मत करा कर आज इनकी तो बुद्धि और भ्रष्ट हो गई बोले क्या तो कट्टी तो बैठ वगैरह एक हाथ से जीव न करे जरा मैंने बुलाए क्या क्या बात है मेरे महाराज जी कह जी की बात सच्ची है तो क्यों करे मुझे बात यह है कि मेरे भगवान के नाम को जब भगवान के स्वरूप को ध्यान को इतना अभ्यास हो गए कि किसी भी प्रकार से अपने बंद को नहीं हो तो मैं जब करू ना जीवा से तो जीवा ने तो पकड़ लू इसी बार जब को नहीं होगी पर ध्यान को जो भगवान को मेरे से छूटे को नहीं देगा ऐसे उपाय मेरे समझने को नहीं आएंगे ध्यान क्या करूं रोटी को अभ्यास क्यों करो मेरे यहाँ को अभ्यास में इसलिए करो कि मैं यदि मरूंगा तो मरने के व्रत में आदमी टट्टी पेशाब हो जाए तो मैं टट्टी पेशाब हो जाऊंगा तो दो व्रत में मर जाऊंगा तो मेरी दुर्गति हो जाएगी तो इसलिए अपना तो भजन गायन हर व्रत करो। अरे बोले तेरे लिए मनाई खुली तुम हर व्रत करा करके समझा तो ये जो तेरी चुगली करनी आदमी है जिसका मूर्ख है ये तो उनके लिए बना रही है कि घंटा आठ घंटा ही 24 घंटा मुझे जो शुद्ध हो गए करो अभी कहे 24 घंटा चले मैंने बंद करने की जरूरत इसी प्रकार से किया बात है कि मैं के वास्ते कोई मनाई नहीं जैसे कोई स्त्री भगवान की भक्ति मिया बहन की जो करे तो मैं के लिए कोई पाबंदी नहीं है वो तो समूह के लिए यह बात कही जा रहा है कि स्त्रियां स्वतंत्र नहीं होकर के तीर मेरा साथ होना कोई घटा पुरुष हो तो मैं अगर साथ में तीर्थ इत्यादि जाना ठीक है और कोई ऐसी बहुत स्त्रियां है कि जगह मैं तीर में है कोई नहीं शास्त्र में तो मैं कहीं जाए मैं कहते फिर समझो कि भगवान मालिक है तो मैं के लिए फिर कोई मनाई कोई समझा एक जो हिस्सों आपने बोला कि भाई एक बात है एक आदमी जो है जिसको रसोई बना करके कहे अरे आपने भोजन किया कर तो मैंने कहे भाई देख एक रोटी आगे की एक रोटी पीछे की ये दो रोटी है ना आगे पीछे की जिसकी एक प्रकार से आपने बदविश्य करना चाहिए और आपने भोग लगाना चाहिए और बाद की रोटी है सो आप खाए तो बोले जिसको दो ही रोटी पे जिखू कोई दो लोगों के लिए कोई लाभ को नहीं के लिए कोई लाभ को नहीं सही बात है कि जिसका रात दिन भगवान को भजन करे अपने के लिए कोई कानून की लाग नहीं है इसी तरह जिसके श्री मीरा भवन की जो है वे के लिए कोई उसको पाबंद नहीं है मैं के लिए कोई पाबंद नहीं मीरा भवन तो असल में इतने में को भगवान का वहां प्रेम थे अति अधिक प्रेम थो देखो देव जो राम जी है मैंने को बहुत प्रबंध करे कि भाई या आपने सत्संग करे भजन करे बार बार बिंदाबिंद जावे तो इस वास्ते अपनी बेइज्जती हो तो इन्हें किसी प्रकार से मरवा जा नहीं तो एक प्रकार से ठीक हो तो मैंने मारने के उद्देश्य थी संजय की वह एक दिन ऐसे बोला मैं ठाकुर जी के चढ़ाशी से बढ़िया बढ़िया मैंने फूला का हार मंगा दू तो फूला के हार की जगह समझो कि सांप मंगा दिया अरे पिटारा में सांप बुरा सारा भरा करके बंद करके अरे सांप پہلا جو ہے چار بھی لیا جس نے 20-30 روپیہ دے دیا اور وہ سونے کی ٹوکری لے لی اور لے کے بھائی میرے بڑھیا سونے کا ہار ہے نہیں پھولا کا ہار ہے ٹھاکر جی کے واسطے رانو جی بھیجا ٹھیک ہے اب سب پوجا کی سامگری لے گئی جنا وہ باندھی اٹھا کے بنے ملے گی اب میں نے کھول کر دے گئے تو سب پھولا کا ہار ہو گیا صاحب تھا جی کا پھولا کا ہار ہو گیا اور وہ گوئندے سب کو رہا اب رانا جی کے پاس میں کھڑی گئی کہ بھائی میں تو سب پھولا کا ہار ہو گیا بولا کہ جو ایسی بات ہے کہ جا کر دیکھ رہے مندر میں ٹھاکر جی کے سب تیرا پڑا ہے شام پتہ میں نے کاٹ گیا تھا تو میں نے بہت آسر ہوں دوسرے دن بولی ایک دوسرے یا اور تو کو نہیں ملے گئے لیکن تو انہیں بڑے بھاری زہر دے دی رہے جو مرضی تھی تو بڑے کروڑوں سے زہر ہمیں کو پیالو بھر کر کے رانو جی بھیجتی ہوں تو وہ پیالو ہے آپ کو بھگوان کو نام لے کر کے پی گئی جو 20 جی کو امرت ہو تو رانو جی بولے کہ انہیں کیا مارا انہیں 20 دے دیے تو مرے نہیں 7 بھیج دیا تو مرے نہیں تو بولے آپ نے 9 تو کیسری سنگھ ہے کہ جی کو کھول دو گے تو کیسری سنگھ نے اپنے مندر کی جو چار دواری تھی میں پنجرے لے جا کر کے میں کیسری سنگھ نے کھلا دیا اور بولے کہ ایک رس رکھ دو کہ جی کے جمع کر جا کر یا بھگوان کی پوجا کرے تو پوجا کی ساری سامگری لے کر کے بڑی خوشی کے ساتھ میں سو گئی خوشی کے ساتھ میں بنی ویرو کو نہیں تو آپ نے اکیلی بھکتی تھی بھگوان کے وہاں تو ایک ہی گئی وہاں ایک ہی گئی تو وہاں ایک جو بھگوان کو جو سرا منڈپ ہے جو میں بھگوان براجمان ہو رہا ہے میں کہ آگے کو جو برندے ہے سرا منڈپ کے آگے کو میں برندے میں جا کر کے وہ اسے سنگھ بیٹھ گئی اب وہ پوجا کرنے کے واسطہ ہی تو وہ دل کی بدھی دوسری بات دیکھیے وہ آج تو بھگوان ہے جی کا نرسم روپ دھارن کر کے آیا ہے وہاں سے ڈنڈوت شروع کری میرے پربھو پربھو آج تو ساکشات پرتکش میں سے پرگٹ ہو کر کے درشن دیا آج میرا انو آ گئے سو پھر میں نمسکار کر کے اربن کی اسے پوجا کرنے شروع کری اوم پا جو پادن سبر پرامی نارائن نم اوم ہستی ارگن سبر پرامی نارائن نم تو سروس پرکار سے خوب پرین سے پوجا کری اور بھگوان کے تیرے کاجا اور آپ نے سمجھو کہ تلسی چڑھائی پوشپ چڑھایا مالا پھرائی اور خوب بھگوان کی آپ نے پوجا کر کے ستی کر کے جیسے روز کرے جیسے اور زیادہ پریم سے کری بولے آج پرتھ بھگوان آ گیا میں پوجا کر کے آپ کی چلی آئی چلی آئی تو رانی جی نے جا کے ہوئی گئے تو وہ سنگ نے تو چھوڑ دیے تو پھر سنگھ کی تو وہ تو پوجا کرنے لاگی سنگھ مجھے سے پوجا آپ کی کرائی اور میں نے پہلا میں ٹھوک کھا کر کے ارے سو آگے میرا بھگوان کو ارے بولے مورکھوں کے لیے یہ بات ہے تجھے ٹہل کر دیکھ لو آگے دیکھے تو سنگھ کے گلے میں ماہ پڑی پڑی تیل گڑا گڑا تجھے پڑا گر کے وہ تلسی پڑی تو بولے چھ بھی جا کے کرکا ہوا تمہیں کہ بھکتی کے پرتاپ سے میرا کی بھکتی کے پرتاپ سے میں نے کوئی بھی روکنی نہیں تو جیسے آپ نے رامائن میں کہ جی کی بات میرا میں گھٹی کہ گرل سودا شام آری ہی تو ہوئی سوک پاون کوئی گل جو دش ہے وہ تو امرت ہو جائے یا بات جو اسے میرا پرتکش کر کے دکھلا دی اور ایری میں وہ بیری ہے جی کو میں کوئی کیسی ہو جائے تو وہ رام جی جو میں وہ دیر ہے تو آنکھیں نہ بھائی کی بھکتی نے دیکھ کر کے اور وہ ایک دم بگے تنا پڑ گئے اور ایک پرکار سے بگ متم ہو گئے تو ایک بھکتی کی مہیما ایسی ہے بھکتی کو پرواہ ایسی ہوئی ہے تو خیال کرنے کی بات ہے کہ وہ ایک پرکار سے کی رات میں محل میں سوتی تو کوئی کوئی وقت کے بیچ چمک بڑا پریم آ تو سمجھتی گانوں بجانوں نت کرنا ناچنا یعنی گھوگیا باندھ باندھ کر کے اور بھگوان کا جو ناچتی تو بھگوان کا پرگٹ ہو جاتا پرگٹ ہوتا ہے ہنس ہنس دونوں بولتا بات چیت کو کرتا तो बाढ़ का जो कारोबार है वो जाकर के खबर दी राणा ने रात की 12 बजे कि महलके में कोई दूसरा पुरुष है, अरे ये तो मालूम नहीं कौन है, पर हाँ सास करके बोले तो बड़ी बहुत राणा जी आया। वो एक महल तो चार ही तरफ नागी तलवारों को पहले लग रहे है, और कोई भी आप उस वक्त और दूसरे कोई नहीं, बहुत भारी पैर एक राणा जी की तरफ से। राणा जी कुआना के कने कान लगा लगा करके सुने तो ये तो सुने कि कोई बोले दो आदमी, किंतु ये बोले या बात सांप को नहीं सुने, और हंसे जी को सुने और गाले जी को सुने सब सुने। तो मीरा और एक तो मीरा और एक कोई आदमी और, तो जड़ में कुआना का धक्को दिए जोर को, धक्को देने के साथ ही कुआर खुल गया और भगवान अंतर ध्यान हो गया, और खाली मीरा से अपने बैठी भजन गावे। जाकर राणा जी बोले कि मीरा अच्छा एक और तेरे के आदमी हाँ सास बोले वो करे गो, बोले करे गो देख लो महल जी को देख लो, अब महल में सुख रहते महल में भगवान कैसे मिले। और बोले कि तुम बता, बोले बताऊ क्या कोई भिक्षा प्राप्त को नहीं हुआ मां गाल दी, कोई आदमी तो महल में हो ना तो क्या रूप कर उसका महल में देख लियो कठिन को नहीं। बिना बोले कि भी कोई अपना भ्रम हो गया तो चलो 5-7 दिन के बाद फिर वही घटना, जहां 70,000 जाकर के फिर वो बात करो, बोली देर तक कान लगाकर सुनते रहे, ठीक जो आपसे में बात करे हाँ सहसे गिरु से, और फिर समय धक्के लगाए धक्के लगाए तो भगवान अंतर ध्यान हो गया खुद को नहीं। फिर बोला कि अब आज तो मैं बोली बात से सुनो खरी आपसे में बात हुई तो वो कौन आदमी थे दूसरो, बोले दूसरा आदमी कौन मैं हूं और दूसरे तरह कोई आदमी क्या आ सके, बार में तो नागी पड़ रहा हूं वो पैर है रावत तो जाए कि न करके। बल्कि बुद्धि चकित हो गई, क्या बात है, बोले तो साक्षी बता बात तो कोई है, तू कोई जादू करे है या कोई आदमी ने गायब कर दिया है क्या करे तेरे में के बीजा तो घड़ा। जनाब बोली कि सच्ची बात यह है कि साक्षात भगवान में महल में आया है, और वे आया था फिर धक्को दिए ना जना भगवान ने सुनकर ध्यान हो गया, जना वो रोने लग गए पढ़ना पड़ गये, बोले मैं बड़े भारी पाप करो कि तेरे इसमें बाधा डालते रहो, मैं फिर एक प्रकार से भगवान को सेवक होकर के आपने सुने हो। तो यह बात सच्ची है कि जो भगवान की भक्ति करे तो भगवान की भक्ति रूपी मणि के प्रभाव से थी, विष खा ले तो वो अमृत हो जावे, और संजो की बैरी है जिसको मित्र बन जावे। तो इस तरह से जिसके सेवा को भाव है मैं के लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं के लिए तो समझो कि घर में भी कटे रहे तो मैं तो बसे भी है, समझो कि तीर्थ ही है, मैं तो खुद ही तीर्थ रूप है, तो वह तो ज्यादा जैसे तीर्थ है। महात्मा लोग तीर्थों में तीर जाते हैं कि तीर्थों को पवित्र करने के वास्ते। एक समय गंगा जी जो है जिकी ने जो भगवान ब्रह्मा जी प्रकट करी और कहे तू मृत हो में जाकर के जीवा को उद्धार कर पापिया को पाप नाश कर, यही भगवती थी गंगा। एक प्रकार से गंगा रोने लाग गई तो ब्रह्मा जी बोला कि बेटी तू रोए क्यों है, बोले मैं पिताने जी इसलिए रोई हूँ कि आप मैंने बैठे को तू जा और तेरे में स्नान किसी जगह पाप नाश हो जाएगी, तो मेरे में सारी दुनिया का पाप इकट्ठा हो सी तो फिर मैं कैसे जीत रहा हूँ, मेरे क्या हाल हो सी। बोले जा कोई चिंता मत कर, एक भी कोई महात्मा तेरे में आकर स्नान कर ले सी तो तेरा सारा पाप स्वाहा हो गया। तो महात्मा लोग तीर्थ आने क्यों जा रहे कि तीर्थ आने तीर्थ बनाने के लिए जा रहे, तो इतनी वहां की शास्त्र के मन महिमा है। तो इसलिए एक प्रकार से समझो अपने गंगा जी को जो इतना महात्म है उससे भी महात्मा को और बढ़ करके महात्म है। तो आप मैं एक बढ़िया बात सुनाऊं, अब जो बात सुनाई ना वो तो सुनाई भगवान की भक्ति की, अब मैं सुनाऊंगा हमारे स्वार्थ की। अब की बार बहुत सी माता बहनों ने भाइयों ने एक प्रकार से बहुत मैंने मदद करी, क्या मदद करी कि जैसे बहुत ही आदमियों ने जिस दिन वो कमरे की बात सुनाई थी ना, एक दिन यह बात कही थी कि एक आदमी संजो की 2,500 रूपया लगाकर एक कमरों बनाए, और वो आज जो कमरों बनाए એક સાર સત્સંગ આપણે વધારે દરેક સાર સત્સંગમાં તમે કઈ ભાઈ બો આવે ભોગવો તો કઈ ભાઈ ખેર કે સત્સંગ સમજાવે તો બને એક પ્રકાર સે લાભ હોય. પરંતુ દીદી આ કમરે બનાને કો આડર દો ઇતને બાપા કમરે ભી બના દો કમરે કે બીચ કે માં સમજો કે આપણ ફેર આપણે મર ગયા સત્સંગ હોય કો નહીં તો બને તો સત્સંગ વર્ષથી જ્યાદા લાભ હોય ને બધા નિમિત્ત દીદી બરા દૂર કામ ન કોઈ આવે તો ક્યાં જેસે રાજા મર ગયો અરે કેસરી રોડે લગી તો ભગવાન નારાજ હોય તું હોય બોલે કે એ વાસ્તે મેં રહ્યું કે મેરો જે લડકો હૈ જો આજ સિંહ કે કામ આજે આજ કે અપરાધગીરી કામનું કોઈ એ વાસ્તે મેં રહ્યું તો આ ચીજ કામમાં નહીં આવે તો બનાવવા લાગે તો બનાવે થોડું હોય તો કમરો આજ બનાવે જીકો ભવિષ્ય કે બીચમે કામ આને તો બહુ ફાયદો હોય એમ બધી જીકા જીવાના બગો કમરા દે દે બંધ કરી દે વે આપણે કમરા મેં જીતો ત્યાગ કરી દે જીકો એક પ્રકાર સે કમરા બનાના વાળા બઢકર ફાયદો કે ફાયદો હોય કે વો તો આપકો હાથ કો હાથ લાભ ઉઠાવ્યો આપણે કમરામાં પાંચ ચાર જીવાને સસ્તિયાને ઉતારી દીધી એ તો પ્રત્યક્ષ વાત હૈ કે વિષયમાં બહુ આદમી મને મદદ કરી તો આ વાસ્તે મેં ગુણતો જાણો છીએ કમ સે કમ જ્યાં આપણે સમજે કે સુરસિંહજી લેડી વાળા હૈ કઈ આદમી બાર બાર ઠરાય અભી ઠરાવે જ્યાં આપણે આનંદરામજી જાણ હૈ તો આપણે સમજે કે સંખ જ્યાં કે આપણે મૂળભૂત નીચે માજી બધાને ઠરાય ઓર ભી આપણે આદિવાન ઠરાય પર એ તરહ સે આજ કી વાત હૈ કે આજ પ્રહલાદરાજી આયા આપણે તો એ ગીતાભાઈ ઓર સીતાભાઈ એ બધાને અલગ અલગ દો કમરા થા ના તો બધાને એ વાત સુનેલી થી તો બોલે કે નહીં તો એક કમરે મેં સાર લીધા એક દે દો ભાઈને તો એક કમરા કા દો ભાગ કર્યા મને દો ભાગ કો મતલબ ગેલ કો ભાગ આગળ કો ભાગ તો આગળ કો જો ભાગ હૈ જો પ્રહલાદરાજી જો ગેલ કો ભાગ હૈ જે કો ભાઈ કી આઈ ગરે દો તો ભાઈ દો ચાર દિન રહે ફર સારે કોઈ ખાલી હોય તો બદલ દેશા કોઈ વાત નહીં તો એક નહીં અહી એક અવસર કેસરી આવ્યું તો મેં ભાઈ આપણે ચિનજીલાલજી હે તો પછી એને છે સારા ઘરમાં રાખો ફર આપણે સોચાયા તો લોકનાથજીને મેં કહો બોલો આપણે ભાગલપુર કા દૂર ડેરા આયા હૈ કઈ તો મોટી ભાઈ તો હૈ એ પ્રહલાદરાજજી રહે તો છે એ કબરો ખરાબ ગાઉ તો દે દો તો બોલે કે એક કબરો દે દે જ્યાં તો મોટી ભાઈ મેં બેઠે નથી તો બેઠા જાઓ અને એક બતાવ્યો આપને કે એ તરફ થી એક નહીં અબ કારણે કઈ આદમી હાંસ વાંસ કરકે બધી પ્રસન્નતા કે સાથ કે બીચમાં એક સમજો કે લોકનાથજી હોય તો બરા એક જાણક આદમી હોય બધાને સમજો કે કઈ કમરા થઈએ બના કે આદમી ભી છોટા બડા કહેતા બોલ કરકે દસ બારા હોગા ઓર સાવિત્રી ભાઈ આવેલી હૈ બંબઈ સે જો એક પ્રકાર સે જેથી બના કને હૈ તો બને પાંચ આદમી હૈ ક્યુ કે કોઈ પંદર વીસ આદમી હોગા તો એક એક કમરે માં આપકો કામ ચલા કરે ઈશ્વરી પ્રસાદજી ને બોલા કે મારે તો દો કમરા બહુત હૈ તો એ સમજો આજ આપણે લાડુરામજી કાપડી આયા થા મેં બોલા કે મારે તો દો કમરા બહુત હૈ હું આદમી બહુ આવે ત્યારે ક્યાં સરે ઓર એક પ્રકાર સે બધી સારે છે તો દો બના કે ભાઈ કે દો બના કે તો એક પ્રકાર સે બોલા કે તો એક કમરે મેં સાર લીધી નહીં એક રૂપિયા ઠારે દોરું ઘણા મેં તેત્રીસ આદમી બાવીસ એક હજાર અગિયાર આગળ પાસ હતો ઈશ્વરથી બરા આદમી જીકાવી અસાધારણ સ્થિતિ જીકાવી એક બડો ત્યાગ થી આપણે કષ્ટ સહ કરે કે રહે રહ્યા સર દેખ રહ્યા કે ઈશ્વરમાં સત્રહસો આદમી એક સત્સંગ કે વાસ્તે ટીચ્યા હુઆ હૈ બધાને આપણે સબ મિલકર કે મદદ કરું તો બાબા આપ પ્રત્યક્ષ દેખો પર્યટનતા એક વિષય મને મદદ કર્યા એક મારા સ્વાર્થ કી વાત આપને બતાવી એ તો મારી બેસતી હતી કુલ નહીં લીધો ખબર મિલકર કે દીદી کریم گئے تو ایک ریل کے ڈبے میں 20 آدمی سمجھ جا سکے. اور جیسے آپ سے وہ بہت پریم نہیں ہو, سمجھ نہیں ہو تو بڑے مشکل ہوئے. اور دوستوں اتنا پریم آپ سے سب کو رہے کہ کیسے بھی بڑھ کر کے تو بڑے کیا لگے. پہلے آدھے آگے نے وہ تھے آگے کو بھاگ لے لو گیل کو بولنے جاؤ, پہلے کوئی بھی آج کو نہیں مار تو چائے جیتی تھوڑی سے تھوڑی دیر ہو سب آدمی آپ کو بڑا اتساہ دکھا رہے ہیں. اب سمے ہو گئی ہے ساڑھے دس زیادہ سے زیادہ بچ گئی آپ نے پکڑا تو اس نے کیا کیا کہ اس سانپ کو مار کر کے اس مینڈک کو چھٹا دیا. تو مینڈک بڑا خوش ہوا, جس نے میرا بڑا اپکار کیا. تو اس مینڈک نے چار لال جو لا کر دی جو کہ جن کی قیمت قریب لاکھ روپئے جو ہے وہ اسے اوکھرے سے میں کہیں آپ نے پڑی تھی کیچڑ میں کیچڑ میں تو میں کیچڑ میں سے نکال کر کے وہ چار لال دے کہ میرا پران بتایا تو ایک پرکار سے میں اس کو کچھ پرسکار دوں. تو اس نے سوچا کہ یہ چار لال میرے پاس رہنے سے دوسرے لوگ خوش رہیں گے. تو اس نے کیا کیا کہ اپنا جانگ چیر کر کے اس کے ماں وہ رکھ لی اور اوپر سے تھی مینڈک نے وہ سمجھو کہ اپنے دانتوں سے اس کو ٹانکا دے دیا جیسے ڈاکٹر دے دیا کرتا ہے. تو ایک پرکار سے اس کو ملا دیا جانگ اور وہ چاروں لال اس کی جانگ کے مائیں رہ گئے. تو اس گاچھ کے اوپر سمجھو کہ ایک کوا جو ہے کاگلا وہ رہتا تھا, اس نے دیکھ لی. وہ ایک پرکار سے سمجھو کہ پڑا ہوا تھا کاگلا. تو اس نے یہ بات تو دیکھی کہ چار لال مینڈے سے ملی اور یہ دیکھ کر کے اڑ گیا. اور وہ ایک پھل جو ہے نا اس کا وہ کاگلا تھا. وہ چار لال کھان کی اس بات کو وہ دیکھنے نہیں پڑا, دل اڑ گیا تھا. اور اس کے بعد میں وہ چار لال اپنی جان کے ماں رکھ لی. اس کے بعد کے ماں پھر وہ بھی اپنے وہاں سے چل دیا. دن میں چلا رات میں چلا, دن کا تو بھوکا تو تھا ہی. اس پرکار سے ایک دوسرے گاؤں جا پہنچا جو ٹھگوں کی نگری تھی. اس نگری میں ٹھگی ٹھگوایا کرتے تھے. تو جو ٹھگنی ہے اس کے پاس جا کر کے اس کو نے سب بات کہی. اور اس ٹھگنی کا جو باپ ہے بھائی ہے وہ ٹھگ تھے. اب انہوں نے کھٹینتر رچا, یہ رچا کھٹینتر کہ اس کا جو بھائی ہے وہ اور اس کا باپ یہ دونوں اس کے پاس پہنچے جس کی جان میں چار لال ہے. اور جا کر کے بہت خاطری کرنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں, میں تو آپ کا سسر لگتا ہوں اور یہ آپ کا سرا لگتا ہے, یہ میرا بیٹا ہے اور ہماری لڑکی ہے تو آپ کے دشنوں کے لیے بہت ہی لاوائک ہے, وہ گھر کے اوپر ہے. آپ آگے بہت ہی اچھا کام کیا. تو بولے ابھی میرا جو وواہ ہوا تھا میری استری تو ہمارے گھر پر ہے, میری ماں ہمارے گھر پر ہے, ہمارا باپ مر گیا. تو ایک پرکار سے یہاں آپ کے یہاں میرا وواہ ہوا تھا یہ تو مجھ کو کوئی جان نہیں ہے. بولے یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی, آپ جب بچے تھے نا چھوٹی اوستھا میں اس وقت میں اپنے شادی ہو جایا کرتی تھی, شاید آپ کو جان نہیں ہے. آپ کی آیو اور میری لڑکی کی آیو دونوں کے سمان ہی آیو ہے. اور جبکہ آپ کی عمر ہے کوئی 12 برس کی تھی. تو بولے 12 برس کے لڑکے کے بھی بات تو یاد رہتی ہے, 12 برس کی عمر میں میرا کوئی ایسا وواہ ہوا ہو ایسی بات تو میرے خیال نہیں. تو بولے ہم کیا جھوٹ کہتے ہیں, اور جھوٹ بھی کہیں تو کوئی آدمی بھی اپنا جوائی کیوں بناوے گا کسی. उसके मन में आई कि भाई क्या मालूम ये कहते हैं तो 12 वर्ष की उम्र न हो कि 10 वर्ष की हो गए और साथ कोई अच्छा चलो तो सही आगे जाकर के मालूम हो जाएगा। आगे गए तो आगे ओत बनी बैठी है, बोला कि इतना बच्चा मैं तो आपके पिताजी ने मुझको बुलाया, मैं आपने ही बुलाया, क्या भूल ही गए हमारे को? लेकिन हमारे को ख्याल ही नहीं है। बोले आपको ख्याल क्यों रहे, ख्याल तो हमारे है। तो फिर खूब बढ़िया रसोई मुंह भाग करके और तुम जो दूध और जलेबी और खीर ये खूब बढ़िया बढ़िया उसको रसोई जमाएगी जैसे जमाई को जमाई जाती है। उसने सोचा कि ये ससुराल कहां से निकला, किंतु उसके समझ में यह बात नहीं आई। रात्रि के समय अपनी अस्त्री के पास वो सोने के वास्ते गया तो उसकी अस्त्री ने कहा कि तुम्हारे पास क्या लाल है वो दे दो मुझको। बोले मेरे पास तो कोई लाल है ही नहीं, वो झूठ बोल गया। बोले नहीं, फलाने तवाल के ऊपर एक मेंढक ने तुम्हारे को क्या लाल दी, उस वृक्ष के नीचे तुम बैठे थे, ये पक्की बात है। हमारे यहां सिखलाए हुए पढ़ाए हुए कव रहते हैं, उन्होंने ये हमारे को खबर पहुंचाई तो लाल तुम्हारे पास में प्यार जरूर है, तो तुम दे दो नहीं तो मैं तुम्हारे को मार डालूंगी। तुम जानते हो ये नगरी ठगों की नगरी है और मैं ठगनी हूं, और आपके पास में जो गया मेरा भाई तुम्हारा सारा बनया, और मेरा बाप गया जो आपका ससुर बनया, मैं तो कोई आपका सारा में ससुर न, मैं आपकी लुगाई। ये तो ठगों की नगरी में तुम फंस गए। उसने कहा कि हम आपको सच कहते हैं कि हमारे पास कोई लाल और नहीं है। तो बोले नहीं तो मैं तुम्हारे को जान से मार डालूंगी, मार के फिर तुम्हारा सब ऐसे तलाशी करूंगी। बोले तुम पहले ही तलाशी कर, मारने के बाद तुम्हारे को क्या मिलेगा, मारने के बाद तो तुम्हारे को पश्चाताप ही होगा, तो इससे मारने से क्या लाभ है? बोले नहीं, जो भी कुछ हो एक मैं बिना मारे एक प्रकार से नहीं छोड़ूंगी, या तो चार लाल दे दूंगी तो तुम्हारे को मैं मार डालू। वो छुरा निकाल करके उसके छाती के ऊपर बैठ गई कि या तो तुम चार लाल दो नहीं मारती हूं। उसने कहा कि क्या वो मार डालो, लाल तो मेरे पास है नहीं। तुम जिस प्रकार से थी, एक राजा जो है बाज को मार करके पिस्ताया था बाज पक्षी को, ऐसे तुम ये सब पिस्ता रही तेरी किसी मारदार। तो ठगनी ने पूछा कि अच्छा वो एक प्रकार से राजा बाज को मार करके कैसे पिस्ताया था या कहीं मुझको तू कहे। तो एक प्रकार से वो आपने उसको बैठा कर दिया, खुद बैठी हो गई और उससे सुनने लगी कि तुम बतला। तो उसने कहा कि एक राजा था, वो हवाखोरी के लिए सिंध की अपने जंगल को गया और साथ में उसके बहुत भारी सेना थी, किंतु उसका घोड़ा बड़ा तकड़ा था, तो घोर बन के बीच के मां आपने चलाया और सेना को पिछू को रह गई। आगे जाकर के उसको बड़ी पिपासा लगी। जेठ का महीना था, धूप पड़ती थी, तो एक वृक्ष के नीचे उसने अपना डेरा डाल दिया। उसके साथ में एक बाज पक्षी रहा करता था, वो एक प्रकार से साथ साथ उड़ा करता था, उसकी चाल भी घोड़े से बढ़कर थी। तो राजा के पास में एक तो घोड़ा है, एक बाज पक्षी है और एक राजा है, उनको बड़ी भारी प्यास लगी। तो वृक्ष के नीचे छा के वहां राजा बैठा है और वृक्ष के ऊपर से थी कुछ जल ऐसे गिर रहा है, सबका जल का छांटे गिर रही है। उसने अपने घोड़ी के अपने ज्ञान में से
घोड़ी का जो एक अपने जो गुण होता है उसमें से एक चांदी का प्याला निकाला और वो उसके नीचे रख दिया। वो तबका भरने लगा, तबका भरते भरते वो करीब आधा या पूर्ण हुआ होगा। तो राजा देखा कि अब मैं उठा करके पीलू तो मेरी पिपासा मिल जाए। राजा पीने लगे इसके पहले ही उसने बाद ने अपनी पांखों के फटकार से थी राजा के हाथ से उसको गिरा दिया। तो राजा के मन में क्रोध आया कि देखो ये तो मेरी जान लेना चाहता है, मेरा प्राण जा रहा है प्यासे का, और जब कहीं मिल लगी तो ये उसको गिलास को गिरा दिया। मन में क्रोध तो आया किंतु बाज पक्षी पुराण है बोल करके उसको क्षमा कर दिया। फिर एक तबका जैसे गिरता फिर गई कथा करने लगा। जब वो आधा भरा होगा तो बाज पक्षी ने जोर लगा करके के और उसे दूसरे दफे भी गिरा दिया। तो राजा को आया क्रोध, उसके पास में पिस्तौल थी तो पिस्तौल मार दी, बाज पक्षी मर गया। अब फिर तीसरी बार भरने लगा, इतने में ही तो राजा की फौज के जो अपने तीक्ष्ण चलने वाले बड़े वेगशाली घोड़े थे वे तो आप उनसे जल लेते थे। ये ठंडा जल एक प्रकार से बोले महाराज जल पियो जल पियो। इतने में राजा ने वो जल ऐसे पी लिया जो जल उसकी फौज के आदमी लाए थे उस जल को, और वृक्ष से जो जल तब